सरगमों और भाइयों, मानव जीवन की सफलता इस बात में है कि हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व सेवा, त्याग और प्रेम से भरपूर हो जाए। सेवा शब्द का अर्थ क्या है? तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में सबसे सूक्ष्म अर्थ सेवा का यह लिया गया कि दुखी मात्र को देखकर करुणित होना और सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना, इसको सेवा का सूक्ष्मति सूक्ष्म रूप बताया गया। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना, इस स्वभाव से साधक को अपनी साधना में आगे बढ़ने में बहुत मदद मिलती है। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना स्वभाव बहुत ऊंचा है। इससे क्रियात्मक सेवा तो बनेगी ही। जब हृदय पर पीड़ा से पीड़ित हो जाएगा तो कुछ किए बिना कैसे रहा जाएगा? रहा तो जाएगा नहीं, सेवा तो बनेगी। परंतु एक बहुत बड़ा उपकार यह होगा कि जो भी कुछ आप थोड़ा कर सकते हैं उस व्यक्ति के लिए, उस प्राणी के लिए, उतना तो करेंगे ही। लेकिन भावना जो होगी आपकी, वह सेवा की सामग्री की तुलना में बहुत विस्तृत होगी, बहुत व्यापक होगी। और उसका एक सहज परिणाम यह होता है कि दुखी का दुख यदि आप दूर नहीं कर सकते हैं तो आपके भीतर जो करुणा जगती है, उस करुणा से कोई सामर्थ्यवान प्रेरित होकर आकर के उसकी सहायता कर देगा। ये बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप अपने आप होता है। बहुत विचित्र बात है। ऐसी सूक्ष्म सेवा के ढंग पर हम लोगों का, सब किसी का ध्यान जाता नहीं है। ऐसा हम लोग सोचते हैं कि क्या बताएं, उस दुखी को तो देखा, लेकिन भाई करुणित होने मात्र से क्या होगा? उससे उसका पेट थोड़े भर जाएगा भूखा है तो, उससे उसकी प्यास नहीं मिट जाएगी प्यासा है तो, उससे उसका रोग नहीं मिट जाएगा बीमार है तो। हम लोग ऐसा सोचते हैं कि खाली करुणित होने से क्या होता है। लेकिन यह प्रकृति का बड़ा एक अनुपम विधान है कि सचमुच किसी का दुख यदि आपके दिल में ऐसा भर गया कि उसको आप अपना दुख करके मानते हैं, तो आप सामग्री से तो भले ही मामूली कुछ कर पाए अथवा न कर पाए, आपके दिल में दूसरे की पीड़ा जब भर कर जाएगी, उससे करुणा का रस उपजेगा। उस करुणा में इतनी शक्ति है कि वो किसी सामर्थ्यवान को पकड़ लाएगी। लेकिन सचमुच आपके दिल में दर्द है तो वो दर्द ही काफी है किसी सामर्थ्यवान को प्रेरित करके वहां ले आने के लिए और उस दुखी की मदद करवाने के लिए। इतना बड़ा रहस्य है पर पीड़ा से पीड़ित होने का। हम लोगों का ध्यान इस बात पर नहीं जाता है। हम लोग वस्तु से किसी की मदद करने को बड़ी बात समझते हैं, और अगर वस्तु से मदद नहीं कर सके तो अपने को असमर्थ समझते हैं। मानव सेवा संघ की प्रणाली में स्वामी जी महाराज ने अपने अनुभूत सत्य को रखा है, और महाराज जी के मुंह से ही मैंने ऐसा सुना और उनको ऐसा करते हुए देखा भी है। केवल सुना ही नहीं है। मध्य प्रदेश से एक परिवार स्वामी जी महाराज से मिलने के लिए आया। रात को 9 बजे होंगे तो मैंने उनको बैठाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना किया कि माता जी, स्वामी जी महाराज के आराम करने का समय हो गया है, तो कृपा करके आज आप चले जाइए, कल सवेरे आइएगा तो भेंट हो जाएगी। और वो महिला रोए सरोए किसी तरह से जाने को राजी ही नहीं। भनक तो स्वामी जी के कान में पहुंच गई। झट से उन्होंने बुलाया, क्या बात है, जल्दी से बुला लिया अपने पास। क्या जाने घंटा भर उन लोगों ने क्या क्या अपना दुख सुनाया, मुझे कुछ नहीं पता। चली गई सुना करके, 10:15 हो गए होंगे। उसके बाद मैं भी लेट गई, बड़ी माता जी भी लेट गई, स्वामी जी भी लेट गए। अब थोड़ी देर के बाद उठ के बैठ रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर में उठ उठ के बैठ रहे हैं। तो माता जी से मैंने धीरे से पूछा कि माता जी, मैं स्वामी जी से पूछूं कि क्या हो रहा है, क्यों उठ उठ के बैठ रहे हैं। तो ये मुझसे ज्यादा जानती थी महाराज जी को। इन्होंने कहा कि नहीं नहीं कुछ मत कहो, चुपचाप रहो, वो तुम चुपचाप लेट जाओ, हम जी को टोको मत। किसी ने कुछ दुख सुनाया होगा, उसके दर्द से व्याकुल होंगे, तुम मत बोलो। बोली तो नहीं मैं, इन्होंने भी कुछ नहीं कहा, माताजी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन स्वामी जी का उस तरह से व्याकुल होना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बार बार देखूं कि क्या हो रहा है। बहुत देर तक ऐसे ही हुआ। फिर तो उठने का समय हो गया, प्रार्थना का समय हो गया, स्नान का समय हो गया, यूं रात कट गई। दूसरे दिन 9 बजे सवेरे दिन में वही परिवार आया स्वामी जी के पास और वे लोग बता के गए कि महाराज, हम लोगों का काम हो गया। ये करुणा का प्रताप मैं बता रही हूं आपको। दूसरे दिन जब 9 बजे के करीब आए तो फिर और दुख सुनने नहीं आए और मदद लेने नहीं आए। बड़े इत्मीनान से आश्वस्त होकर के आए और महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हम लोगों का काम हो गया, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। और चले गए वापस। उस समय तो नहीं, लेकिन किसी दूसरे अवसर पर मैंने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी, क्या होता है। तब उन्होंने पहले अपनी तकलीफ बताई और उसके बाद साधक के जीवन में पर पीड़ा का घर कर जाना, दूसरे की पीड़ा मुझको अपनी पीड़ा की तरह महसूस होने लगे, इस बात की महिमा बताई उन्होंने। तो बाहरी लाभ तो ये हो गया कि जिस व्यक्ति की पीड़ा से आप दुखी हो गए हैं, उसको किसी सामर्थ्यवान ने मदद कर दिया और उसका काम बन गया, ये बाहरी लाभ हुआ। और आंतरिक लाभ क्या होता है कि जिस साधक के जीवन में करुणा का रस उद्वेलित होता है, उस साधक के व्यक्तित्व में से जन्म जन्मांतर से जमा हुआ सुख भोग की वासना का नाश होता है। बहुत बड़ी बात है। कितना व्रत करेंगे हम लोग, कितना उपवास करेंगे हम लोग, कितना इंद्रियों का दमन करेंगे हम लोग, कितना जबरदस्ती भजन पूजन करके उसको दबाने की चेष्टा करेंगे, उससे वो काम नहीं बनता जो काम पर पीड़ा से पीड़ित होने के कारण हृदय में जब करुणा उपजती है तब हो जाता है। तो अब आप सोच करके देखिए कि किसी दुखी का दर्शन हुआ आपको, तो उसको लाभ ज्यादा हुआ कि अपने को लाभ ज्यादा हुआ जी? अपने को लाभ ज्यादा हुआ। लेकिन साधक के जीवन की बात क्या है कि उसे सेवा का व्रत तो लेना ही पड़ेगा, उसके बिना तो जान बचेगी नहीं, उसके बिना राग मिटेगा नहीं। लेकिन उस सेवा में क्रिया का महत्व जितना है, उससे कहीं अधिक भाव का महत्व है। पीड़ित अगर आपको अपने से छोटा मालूम होता है और आपको ऐसा लगे कि मैं तो भाग्यशील हूँ, परमात्मा ने मुझको सामर्थ्य दी है, तो दीन दुखी की सेवा करो। अपनी अपेक्षा कोई दीन दिखाई दे रहा है तो आपकी सेवा का वो फल नहीं होगा जो होना चाहिए, क्योंकि किसी को मैंने दीन समझा तो इसका मतलब ये है कि मुझको अपने में समर्थ होने का अभिमान है। इतनी सूक्ष्म बात है, तो ऐसे मुझको तो उतनी हिम्मत नहीं है वैसे बात करने की, लेकिन स्वामी जी महाराज को तो मैंने सुना है कि जब पैसे वाले लोगों के बीच में बैठते तो वे कहते कि अगर तुमको अपने पैसे का महत्व मालूम होता है और दूसरा कोई तुमको दरिद्र दुखी दिखाई देता है और अपने से छोटा समझ करके उसकी तुम मदद करते हो तो तुम्हारे में धन का अभिमान बढ़ेगा और उस गरीब में धन का लोभ बढ़ेगा। अभिमानी आदमी जब किसी की सेवा करता है, सेवा शब्द का तो प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, बल का अभिमानी और धन का अभिमानी जब किसी को कुछ देता है, कुछ मदद करता है अभिमान के साथ, तो उसके अभिमान के कारण उसकी वस्तु को लेने में दूसरों में दीनता उत्पन्न होती है, अपनापन नहीं उत्पन्न होता, अपनेपन के भाव की वृद्धि नहीं होती। तो क्या हो गया, शरीर की तो उसकी रक्षा हो गई, आपने भूखा समझ करके खाना पहुंचा दिया तो शरीर को तो पोषण मिल गया, लेकिन उसका मन बहुत भिखारी बन गया। स्वामी जी महाराज ने इस सेवा को बड़ी भारी कुसेवा बताया। सोचने की बात है, कुसेवा क्यों? एक कुसेवा तो मैंने अपनी की कि अभिमान पाला अपने में, और दूसरी की कुसेवा उस व्यक्ति की कि जिसके मन के भीतर दीनता आ गई, इंफीरियोरिटी आ गई, धनी को देख करके ईर्ष्या आ गई, तो अपना भी अपकार हो गया, उसका भी अपकार हो गया। बड़ी सोचने की बात है, बहुत समझ बूझ कर चलने की बात है। तो साधक के जीवन में सेवा चाहिए, और जो सेवा करने चलता है उसको अपनी सेवा पहले करनी चाहिए। अपनी सेवा क्या करोगे, तो मानव सेवा संघ ने सलाह दी कि अपनी सेवा पहले ये कर लो कि मिली हुई सामर्थ्य मेरी नहीं है, तन में बल मिला है तो मेरा नहीं है, हाथ में पैसे मिले हैं तो मेरे नहीं है, संगी साथी मिले हैं तो मेरे नहीं है, ये किसके हैं भाई, किसके हैं? तो भौतिकवादी हो तो अपने को ऐसे समझा लो कि जिनको इसकी जरूरत है ये चीजें उसकी हैं, तो जिसकी वस्तु है उसको देने में कोई किसी को अभिमान आएगा जी? नहीं आएगा। आपकी वस्तु है, आपको मैं देना चाहती हूँ, तो जितनी जल्दी आप ले लेंगे मुझसे मुझे बड़ा हर्ष होगा, और जब तक आप उसको ले नहीं लेंगे तब तक उसकी सुरक्षा का दायित्व तो अपने पर रहेगा। तो दे देने में आदमी ऋण मुक्त हो जाता है। भौतिकवादी है तो ऐसा मानिए, धन किसका है, जिसको उसकी जरूरत है उसका है, शरीर का बल किसका है, जो निर्बल है जिसको उसकी जरूरत है उसका है, ये साधक का जीवन है। धन के बल पर, शारीरिक बल के आधार पर जो अहम का पोषण करना चाहता है, जो जन समाज में जय जयकार सुनना चाहता है वह तो साधक की सूची में है ही नहीं। एक सज्जन मेरे पास आए, मानव सेवा संघ के परिचित हैं, स्वामी जी महाराज के पास बहुत आते थे और दूर से शरीर के संबंध से रिश्तेदार भी लगते हैं, तो आए मेरे पास। कहने लगे कि मेरी माता जी का देहांत हो गया है, तो उनकी भावना बड़ी परोपकार की थी, तो मैं इतना इतना धन माता जी के हित के लिए परोपकार में लगाना चाहता हूँ, तो आप मुझे सलाह दीजिए कहाँ लगाऊं। तो मैंने कहा कि भैया अन्य संस्थाओं को तो मैं जानती नहीं हूँ, और मुझसे पूछने आए हो तो मैं मानव सेवा संघ का नाम लूंगी। तो मानव सेवा संघ में रोगी सेवा है, बालक सेवा है, गौ सेवा है, साधक सेवा है, जिस विभाग में चाहो तुम जितना दे दो मैं सब ले लूं, और तुमको विश्वास दिला दूं कि सदुपयोग होगा दुरुपयोग नहीं होगा। ये कह दिया मैंने, जो तुम्हारी भावना हो, रोगी की सेवा करना चाहो मेरे पास अस्पताल है, बच्चों की सेवा करना चाहो मेरे पास बाल मंदिर है, गऊओं की सेवा करना चाहो मेरे पास गौशाला है, साधकों की संतों की सेवा करना चाहो वो भी मेरे पास है, जिस विभाग में देना चाहो और जितना देना चाहो सब दे दो मैं ले लूंगी, और विश्वास के साथ कह दूंगी कि इसका दुरुपयोग नहीं होगा। जो साधक सेवक वहां बैठे हैं वे खाएंगे नहीं, जिस भाव से तुम दोगे उसी सेवा में लगा देंगे। तो थोड़ी देर वे सज्जन सोचते रहे, और सोचने के बाद कहने लगे कि आपकी संस्था तो इतनी विशाल है कि उसमें मैं कितना भी दे दूं तो उसमें जाके वो भूल मिल के खत्म हो जाएगा, तो मेरी माँ के नाम पर अलग कुछ दिखाई तो नहीं देगा। अब सोच लो। तो मैंने कहा नहीं, सो तो नहीं होगा, वो तो हमारी विशाल सेवा है, और वहां तो सेवा करने वाले का हित देखकर स्वामी जी महाराज ने ऐसी प्रथा बढ़िया बना दी है कि कोई लाख करोड़ भी दे जाए तो, और कोई दो पैसा दे जाए तो, दूसरों के मन पर अंतर का कोई आधार नहीं है, कुछ नहीं पता चलता है कि किसने कितना दिया है, और दाता का इसी में हित है। तो कहा कि तब वैसे मैं नहीं करूंगा, मुझको तो कुछ ऐसे करना है कि वो अलग से संस्था के लोग उसको संभालें भी, उसको काम में भी लाएं, और अलग से मेरी माता जी का नाम भी रहे और दिखाई भी दे कि हाँ माँ के बेटे ने ऐसा किया है। तो मैंने कहा ऐसा मानव सेवा संघ में नहीं हो सकता, जहाँ हो सकता है वहां जाओ वही करो। तो मानव सेवा संघ की प्रणाली में कोई भी साधन जो हम लोगों के सामने रखा गया वो वस्तु को दृष्टि में रखकर नहीं दिया गया। वस्तु का महत्व नहीं है, वस्तु तो आज आपके पास है और कल किसी और के पास जाएगी, संपत्ति आज आपके पास है कल और किसी के पास जाएगी। अगर आप हर्षपूर्वक निरभिमानी होकर के सेवा कार्य में लगा देंगे तो उसका एक विशेष फल आपको मिल जाएगा, निरभिमानी होकर के ममता लोभ छोड़ करके सेवा में नहीं लगाएंगे तब भी वस्तु आपके साथ जाने वाली नहीं है, सदा के लिए आपके पास रहने वाली नहीं है, वो आप खुशी से दे दो तो और खुशी से ना दे दो तो जबरदस्ती छूटेगी जरूर, रहेगी नहीं आपके पास। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कहा, सेवा करने का अधिकारी कौन है जो सबसे पहले वस्तु की ममता को छोड़ सके, वो सेवा का अधिकारी है। और उसकी सेवा का फल क्या होता है कि उसके अपने जीवन में से राग की निवृत्ति हो जाती है और ऐसे राग निवृत्ति का साधन करने वाला सेवक जब किसी की सेवा करता है तो उस सेव्य में सेवा की पवित्र भावना जग जाती है। ये कसौटी है कि हमने ठीक सेवा की। सेवा करने वाले में राग की निवृत्ति हो जाए और जिसकी सेवा की जाए उसमें सेवा का भाव जग जाए, वो खुद सेवक बनने के लिए लालायित हो जाए, तब तो समझना चाहिए कि मैंने ठीक सेवा की। और सेव्य में यदि लालच पैदा हो गया, सेव्य में अगर लालच पैदा हो गया तो इसका मतलब है कि मैंने ठीक सेवा नहीं की। शरीर के द्वारा सेवा करो तो, धन के द्वारा सेवा करो तो, जिसकी सेवा की गई उसमें विलासिता पैदा हो जाए, उसमें ये लालच पैदा हो जाए कि ये तो बड़े उदार पुरुष हैं, तो जितना इनमें से निकल सके उतना निकाल के ले लो, इस तरह का स्वार्थ और विलास पैदा हो जाए तो सेवक को धीरज रखकर अकेले में बैठ करके सोचना चाहिए कि मेरी सेवा की वृत्ति में कहीं कोई गलती हो गई जरूर। मैंने दोनों ही तरह के उदाहरण जीवन में देखा। महाराज जी के पास आने से पहले मैं समाज की सेवा करने की भावना रखती हूँ, इस बात का बड़ा आभास था अपने में। उस समय भी मैंने करके देखा, असाधन काल में की गई सेवा से जिसकी सेवा की मैंने उसमें अधिकार लालसा पैदा हो गई बड़े जोरों से। ये मेरी अपनी जानी हुई बात है। महाराज के संपर्क में आने से पहले शौक होता है ना व्यक्ति का, सुख भोगने का दरवाजा बंद हो गया विधान से तो सेवा करके समाज में नाम कमाने का शौक पैदा हो गया। एक सीढ़ी ऊपर है सही, लेकिन है तो व्यक्तित्व की पूजा ही। तो जो मुझे सूझा सो मैंने किया और जिसके लिए किया उसका चौपट हुआ, क्योंकि उसमें अधिकार लालसा जग गई। तो महाराज जी की वाणी जो है उसमें इतना सत्य है, इतना सत्य है कि जिसको चाहिए वो प्रयोग करके देख ले। मैंने किसी को कहा कुछ नहीं, कभी नहीं कहा, लेकिन जिस धन का अभिमान मुझ में था उस अभिमान युक्त वस्तु से सेवा करने पर सेव्य में अधिकार लालसा जग गई और महाराज जी के समझाने से, उनकी सलाह से कमाई हुई संपत्ति को अपना मानने की भूल छूट गई तो उसका कुछ दूसरा ही फल दिखाई देने लग गया, उसका कुछ दूसरा ही परिणाम दिखाई देने लग गया। तो ये बात मैं बिल्कुल सत्य आपकी सेवा में निवेदन करती हूँ कि किसी भाई को, किसी बहन को, किसी दुखी की मदद करने का जी में आवे तो पहले उस वस्तु की ममता तोड़ो जिस वस्तु से सेव्य की सेवा करनी है, उसी की मानो चाहे परमात्मा की मानो, अपनी मान कर किसी को कुछ मत देना। न देने से उतनी हानि नहीं होगी कि ममता की वस्तु देने से दूसरे की ज्यादा हानि होगी। तो पहले अपनी सेवा करें हम लोग। प्राप्त सामग्री मेरी नहीं है, प्राप्त सामग्री मेरे लिए नहीं है, जो लेने के लिए मेरे सामने खड़ा है वह उसने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, ऐसा मानो। और नहीं तो प्रभु की लीला ऐसी अपरंपार होती है कि आप आप अपने अभिमान को पालने के लिए किसी को कुछ देना चाहते हैं तो दूसरे में न लेने का भाव पैदा हो जाता है, अपना समूह लिए आदमी रह जाता है। आप देना चाहते हैं जिसको, वो इनकार करता है, नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। तो देने का जो अभिमान लेकर चला है देने, उसके अभिमान को बड़ी ठेस लगती है। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं देना चाहूं तो कोई ले ही ले। इसलिए अगर कोई लेने के लिए आपके पास आ गया है दैव योग से, तो उसको छोटा समझ के मत दीजिए, उसको नीच समझ के मत दीजिए। ऐसा सोचिए कि मैं तो साधक हूं, वस्तुओं का मैं करूं क्या? अगर इसका अधिकारी मेरे पास अपने आप लेने को आ गया है तो भीतर भीतर जीवन दाता, जन्म दाता, सामर्थ्य दाता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करके वस्तु दीजिए। तो वस्तु का महत्व बहुत थोड़ा होगा और निरभिमानता पूर्वक की गई सेवा का महत्व बहुत बड़ा होगा। तो मानव सेवा संघ ने इसको सेवा कहा। दुखी मात्र को देखकर करुणित होना, सुखी मात्र को देखकर प्रसन्न होना। तो दुखी को देखकर करुणित होने की अपेक्षा सुखी को देखकर प्रसन्न होना और महंगा पड़ता है। साधक को इसके बारे में भी थोड़ा सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि दुखी को देखकर करुणित होने में कुछ अपना मूल्य बढ़ता है तो व्यक्ति को अच्छा लगता है, शांति मिलती है भीतर से। थोड़ी ही सामग्री है तो क्या, अगर किसी को जरूरत है तो दे करके हृदय शीतल होता है, अच्छा हुआ, अच्छी जगह में पहुंच गया, अच्छा हुआ अमुक व्यक्ति के दुख में ये सामग्री काम आ गई। तो इसमें व्यक्ति को थोड़ी भीतर से शीतलता मालूम होती है, अच्छा लगता है। लेकिन जब अपने से ऊंची परिस्थिति वाले को देखो और देख करके दिल में ईर्ष्या पैदा न हो, तो उस शुद्ध हृदय में ईश्वर का ईश्वरत्व प्रकट होता है। सुखी मात्र को देखकर प्रसन्नता हो जाए तो ये शुद्ध चित्त की निशानी है, और सुखी को देखकर जलन पैदा हो जाए या अपने में हीनता का भाव पैदा हो जाए तो ये अशुद्ध चित्त की निशानी है। मानव सेवा संघ की प्रणाली में सेवा के अर्थ में दोनों पक्ष बताया गया, दुखी को देखकर करुणित होना और सुखी को देखकर प्रसन्न होना। करुणित होना जितना आवश्यक है, प्रसन्न होना उससे अधिक आवश्यक है। इसमें व्यक्ति का बड़ा विकास होता है। और आप देखेंगे कि जिन लोगों के दिल में सुख की वासना नहीं है वे सुखी को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। छोटे छोटे जानवर के बच्चे, कुत्ते के बच्चे, बकरी के बच्चे, गाय के बच्चे माँ के पास खेल कूद रहे हैं, बड़ा आनंद आता है उनको देख करके, बड़ी खुशी होती है, बड़ा मजा आता है। और दिल में किसी प्रकार की सुख की वासना दबी हुई है, वासना के कारण जिसका चित्त अशुद्ध है उसको सुखी को देखकर प्रसन्नता नहीं होती, सुखी को देखकर उसमें दोष दर्शन होने लगता है। अच्छा ये इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे खाते हैं, ऐसे बात करते हैं, तो और कोई भी बुराई आप नहीं करेंगे, बड़े सज्जनता का व्यवहार करेंगे तब भी सुखी के सुख ने जो आप में एक हीनता पैदा की, उस हीनता की प्रतिक्रिया में उस सुखी व्यक्ति में दोषों का दर्शन होने लगता है और आदमी सामने नहीं तो पीछे में उसकी आलोचना करता रहता है। ये आलोचना जो है ये एक प्रकार से विरोधी प्रतिक्रिया है, वर्बेटिव है, बोल के करना। सज्जनता तो सुरक्षित है, उसका नुकसान तो मैंने कुछ नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके सुख ने मेरे हृदय को हर्षित नहीं किया तो और कुछ नहीं तो कम से कम उसकी उसको क्रिटिसाइज करने में तो मजा आएगा, और सामने नहीं तो पीछे में। ये क्या है? ये अपने चित्त की अशुद्धि है। वासना रहित चित्त जब होता है तो सुखी मात्र के सुख से बड़ी प्रसन्नता होती है। साधक समाज के लिए, हम भाई बहनों के लिए यह एक कसौटी है कि हम देख सकें कि हमारा चित्त में, हमारे चित्त में निर्वासना है कि नहीं। किसी भी प्रकार का कोई सुख दिखाई दे और उससे अपने में हर्ष हो जाए, बड़ा अच्छा है। भगवान सबको सुखी रखो, भगवान इसको सदा आनंदित रखो। अपने बाल बच्चे को सुखी देखकर जैसा आनंद आता है, किसी भी अपरिचित बच्चे को हंसता खेलता देखकर हृदय हर्ष से भर जाए, तो ये साधक का लक्षण है, ये चित्त की शुद्धि का लक्षण है। और सेवक का तो बड़ा भारी धर्म है, दुखी मात्र के दुख से करुणित होना और सुखी मात्र के सुख से प्रसन्न होना, यह है चलते फिरते, बात व्यवहार करते, उठते बैठते हम सब लोगों को अगर ध्यान में रहे तो हमारी सेवा की प्रवृत्ति से अपना भी बड़ा उपकार होगा और जिस जन समाज में हम सेवा करने के लिए प्रवेश करते हैं उस जन समाज में भी बहुत उन्नति होगी। तो मानव सेवा संघ का उद्देश्य है व्यक्ति का कल्याण और सुंदर समाज का निर्माण। तो हम लोगों को बड़ी बड़ी योजना नहीं सोचनी है, निकटवर्ती जन समुदाय जो हमारे आसपास के रहने वाले हैं उन्हीं में से जहां दुख दिखाई दे हृदय में करुणा उपजे, जहां सुख दिखाई दे हृदय में प्रसन्नता आ जाए, कि जिस हृदय में करुणा और प्रसन्नता का निवास होता है, जो व्यक्ति स्वयं अपने आप ही प्रसन्न रहता है, उस प्रसन्न चित्त में काम की उत्पत्ति नहीं होती। जीवन में नीरसता जब आती है तो कामनाओं की वृद्धि हो जाती है, और जिस चित्त में प्रसन्नता निवास करती है उस चित्त में कामनाओं की उत्पत्ति नहीं होती। तो आप सोच करके देखिए कि ध्यान लगाने में, भजन करने में, शांत रहने में, समाधि लगाने में अगर कुछ बाधा है तो मन और चित्त की चंचलता ही बाधा है और तो कोई बाधा है नहीं। और इस बाधा को मिटाने के लिए साधक कितना कितना प्रयास करता है, बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और इन बाधाओं का अंत नहीं होता। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दुखियों के दुख में शामिल होना शुरू कर दो, तुम्हारे चित्त की अशांति चली जाएगी। और जिन्होंने किया है, करके उन्होंने देखा है, बड़ी शांति रहती है, बड़ी प्रसन्नता रहती है। उसका प्रतिकार समाज मुझको क्या देगा, इसकी चिंता सच्चे सेवक को कभी नहीं होती। करने का मौका लग गया, किया, और शांत और सुख है वो अपने आप में ही सुखद है। दूसरों से कुछ लेने देने की आशा कुछ है ही नहीं, अपनी मस्ती में किए जाओ और आनंद में मस्त रहो। जिन साधकों ने सेवा व्रत के आधार पर संपूर्ण जीवन को साधन में बनाना पसंद किया, वे आज भी अपनी सीमित शक्ति के साथ ही काम करने में खूब मस्त हैं। ये सेवा का अर्थ हुआ। और त्याग में आपने सुना ही है, जो सदा सदा के लिए अपने साथ नहीं रह सकता, उन सबके साथ संबंध विच्छेद कर दो, ये त्याग है। मनुष्य संघ परिभाषा नहीं बनाएगा और सूची नहीं लिखवाएगा, हम लोगों के सामने एक सूत्र रख दिया गया। अब अकेले जाके बैठ करके सोचो कि मेरे पास कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सदा के लिए मेरे साथ नहीं रह सकती। उन सबकी ममता तोड़ दें, उन सबसे संबंध तोड़ लें, ये त्याग हो गया। और प्रेम का अर्थ क्या है? जो सदा सदा से मेरे साथ है, जो सदा सदा तक मेरे साथ रहेगा, उसी को अपना मानो, उसी के होकर रहना पसंद करो, उसी का काम करो। तो महाराज जी ने कहा कि बेटा, तुम्हारा सदा उसी में नित्य वास रहेगा। ये प्रेम की पूर्णता है। उसी को अपना मानो, उसी से संबंध रखो, उसी के होकर रहना पसंद करो, उसी का काम करो। तो क्या होगा? अपना नित्य वास उसी में रहेगा। ये प्रेम की पराकाष्ठा है। तो सेवा, त्याग, प्रेम, इसी को मानव जीवन की सफलता की कुंजी बताया महाराज जी ने। जो सेवक हो सकता है उसकी राग निवृत्ति हो जाएगी, जो त्याग कर सकता है वो अशरीरी जीवन में प्रवेश कर जाएगा, जो प्रभु का प्रेमी हो सकता है वो भक्त हो जाएगा, उसका जीवन प्रेम से भरपूर हो जाएगा। तो आज से लेकर अंत तक मतलब शरीर के नाश होने की घड़ी तक नहीं, अंत जब मैं कहती हूँ तो उसका अर्थ है कि मेरा जो सीमित अहम भाव है, जिसको लेकर मैंने आज अपने को वक्ता स्वीकार किया, आपको श्रोता स्वीकार किया, मैं बोल रही हूँ, ये मेरा विचार है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा मत है, तो मैं और मेरा जिसमें से निकल रहा है, उस सीमित अहम भाव का रूपांतर हो जाए। किसमें रूपांतर हो जाए? ज्ञान और प्रेम में। तो जब तक ये पूरा हो जाए तब तक के लिए मैं कहती हूं, आज हम लोगों ने सेवा, त्याग और प्रेम के व्रत को अपनाया, तो आज से लेकर इस क्षण से लेकर तब तक हम सेवक, त्यागी और प्रेमी बने रहेंगे, तब तक बने रहेंगे जब तक कि सीमित अहम भाव ज्ञान स्वरूप होकर, प्रेम स्वरूप होकर उस अनंत में विलीन न हो जाए। तब तक इन व्रतों का पालन हम सब भाई बहनों को करना है, सेवा, त्याग, प्रेम। फिर उसके बाद में ही पूछा जाएगा कि आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं कि बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी कौन है, मानव सेवा संघ नहीं पूछता है। ये नीचे की सीमा की बात, सांप्रदायिक भेद मानव सेवा संघ में नहीं है। आप साधक हैं, ठीक है, कैसे आपका विकास होगा? सेवा, त्याग, प्रेम से। अब इन तीन व्रतों को ले लो और उसके बाद चाहे किसी गुरु से दीक्षा ले लेना और चाहे किसी संप्रदाय में शामिल हो जाना, और चाहे अपने को कुछ भी स्वीकार कर लेना और चाहे सब कुछ अस्वीकार कर देना, संघ आपसे नहीं पूछेगा। आपकी अपनी खुशी, अपनी स्वाधीनता, जहां जाइए जो करिए, मनुष्य हो करके यदि सेवा त्याग प्रेम का व्रत ले लिया तो यह व्रत आपको पूर्णता तक अवश्य पहुंचा देगा। तो वही पूर्णता।